ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में सर्वोच्च लेखा संस्थानों के एशियाई संगठन की 16वीं सभा का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस अवसर पर कहा कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग देश की सार्वजनिक वित्त व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान ने कैग कार्यालय को व्यापक अधिकार और पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की है। राष्ट्रपति ने कहा कि कैग का कार्यालय संविधान निर्माताओं की उम्मीदों पर खरा उतरा है। उन्होंने कहा कि यह नैतिक आचरण की एक आदर्श संहिता का पालन करता है जो इसके कामकाज में ईमानदारी के उच्चतम स्तर को सुनिश्चित करती है। चार दिन के सम्मेलन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की जाएगी। इस वर्ष की बैठक का एक प्रमुख आकर्षण वर्ष 2024 से 2027 की अवधि के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू द्वारा इस एशियाई संगठन की अध्यक्षता ग्रहण करना है। इस सभा में 42 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 200 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरीका की 3 दिन की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। उन्होंने डेलावेयर में 6वें क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। श्री मोदी ने न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय की एक सभा को भी संबोधित किया। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमरीका यात्रा को बहुत सफल बताया है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम से स्पष्ट है कि अमरीका में भारतीय अमरीकी समुदाय ने कितना मजबूत संपर्क स्थापित किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के शासक मंडल की 9वीं वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए उज्बेकिस्तान के ताशकंद पहुंच गई हैं। वे कल बैठक में शामिल होंगी। भारत इस बैंक का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। बैठक में विकास एजेंडे से संबंधित महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि पर भी हस्ताक्षर करेंगी। इस संधि का उद्देश्य दीर्घकालिक आधार पर दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए व्यापक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। अपनी 5 दिन की यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन की उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव से मुलाकात करने की संभावना है। श्रीमती सीतारामन उज्बेकिस्तान, कतर और चीन के अपने समकक्षों तथा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगी। वे विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय प्रवासियों के साथ भी बातचीत करेंगी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के 2वें चरण में कल स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुचारू मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस चरण में 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इन जिलों के 25,78,000 मतदाता 239 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख तारिक हामिद कर्रा और अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी प्रमुख हैं। विधानसभा क्षेत्रों में कुल 3,502 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इन सभी में वेबकास्टिंग तथा मतदाताओं के लिए बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। इस चरण के लिए चुनाव प्रचार कल शाम समाप्त हो गया। कल होने वाले चुनाव में 24 मतदान केंद्रों पर 15,500 से अधिक विस्थापित कश्मीरी पंडित मतदाता हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विस्थापित कश्मीरी पंडित मध्य कश्मीर के श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल जिलों के 15 खंडों में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में किसानों और किसान संगठनों के साथ बातचीत की। बैठक के बाद श्री चौहान ने कहा कि करीब 50 किसान नेताओं ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने किसानों के सुझाव तथा उनके मुद्दों को सुना। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।